समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम का कहना था कि दुनिया की हर चीज ठोकर लगने से टूट जाती है, लेकिन एक कामयाबी ही है जो ठोकर खाकर मिलती है। इसी सुविचार के साथ सोमवार की एक नई नवीली सुबह में ढेर सारी नई चुनौतियों के साथ समाचार पत्रिका कार्यक्रम आज सवेरे लेकर आकाशवाणी स्टूडियो में मौजूद हैं श्रोताओं के ही अपने रवि कपूर और नीना अरकल। स्वीकार कीजिए हम दोनों का नमस्कार।
Hello Ravi, good morning and a very warm welcome to all our listeners tuned in to Akashvani FM Gold on 100.1 MHz and the Akashvani network. We bring to you our daily news magazine program, Aaj Savere, wherein we give the latest in national and international news, metro city updates, as well as some historical information related to this day, that is 13th of April 2026. And we begin with the headlines, right?
जी बिल्कुल नीना, शुरू कर लेते हैं सिलसिला मुख्य समाचारों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में नारी शक्ति वंदन सम्मेलन को संबोधित करेंगे। राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित ये सम्मेलन देश के विकास पथ को दिशा देने में महिलाओं की अधिक भागीदारी की प्रतिबद्धता मजबूत करेगा। ये पंचायत से लेकर संसद तक सभी स्तर तक शासन और नेतृत्व में महिलाओं की बढ़ती भूमिका को उजागर करेगा, साथ ही निर्णय लेने की प्रक्रिया में महिलाओं के अधिक प्रतिनिधित्व का महत्व भी रेखांकित करेगा। एक रिपोर्ट।
विभिन्न क्षेत्रों से महिलाएं इस कार्यक्रम में शामिल होंगी। इसमें सरकार, शिक्षा, विज्ञान, खेल, उद्यमिता, मीडिया, सामाजिक कार्य और संस्कृति जैसे अलग अलग क्षेत्रों के प्रतिनिधि भी भाग लेंगे। यह सम्मेलन वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में महिलाओं की भूमिका को उजागर करेगा। सितंबर 2023 में संसद ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया था, जिसका उद्देश्य विधायी संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना है। इस अधिनियम के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटों का आरक्षण किया गया है। देश भर में महिलाओं के आरक्षण को लागू करने पर ध्यान देते हुए इस महीने की 16 तारीख से संसद में भी इस पर चर्चा की जाएगी। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
President Draupadi Murmu will be on a four-day visit to Gujarat and Maharashtra beginning today. The President will attend the first convocation ceremony of AIIMS Rajkot today. Tomorrow, President Murmu will join the Samajik Samrasta Mahotsav at Lok Bhavan, Gandhinagar on the occasion of the birth anniversary of Dr. B.R. Ambedkar. The President will also attend the fifth convocation ceremony of Rashtriya Raksha University at Gandhinagar tomorrow.
मशहूर गायिका आशा भोंसले का अंतिम संस्कार आज शाम 4 बजे मुंबई के शिवाजी पार्क में राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। उनका निधन कल मुंबई के एक अस्पताल में 92 वर्ष की आयु में हो गया था। सीने में संक्रमण और कमजोरी के कारण आशा भोंसले को शनिवार शाम एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। आशा भोंसले आशा ताई के नाम से भी प्रसिद्ध थी। उन्हें पद्म विभूषण और महाराष्ट्र भूषण पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि उनके आवास लोअर परेल स्थित कासा ग्रांडे में सुबह 11 बजे दी जाएगी। आकाशवाणी समाचार की ओर से आशा जी को एक विनम्र श्रद्धांजलि।
आशा भोसले ने अपने 8 दशकों से भी अधिक लंबे कार्यकाल में विभिन्न भाषाओं में 12,500 से ज्यादा गीत रिकॉर्ड किए। उन्होंने मराठी फिल्मों से अपने करियर की शुरुआत की और 1948 में चुनरिया फिल्म के साथ हिंदी फिल्म जगत में प्रवेश किया। लता मंगेशकर, शमशाद बेगम और गीता दत्त जैसे दिग्गजों के बीच उन्होंने अपनी कला के दम पर एक अलग पहचान बनाई और अपने लंबे करियर के दौरान कई प्रमुख अभिनेत्रियों के लिए अपनी आवाज दी। उन्हें 2 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 18 महाराष्ट्र राज्य फिल्म पुरस्कार, 9 फिल्म फेयर पुरस्कार जिनमें एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी शामिल है तथा सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायन के लिए रिकॉर्ड 7 फिल्म फेयर पुरस्कार प्राप्त हुए। वर्ष 2000 में उन्हें सिनेमा के क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च सम्मान दादा साहेब फाड़के पुरस्कार प्रदान किया गया। वर्ष 2008 में भारत सरकार ने उन्हें देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने 2011 में उन्हें संगीत इतिहास की सबसे अधिक रिकॉर्डिंग करने वाली कलाकार के रूप में मान्यता दी।
What a legendary immortal singer.
Bhai, bilkul jawab nahi.
Yes. City of Seattle has become the first city government in the United States to host a life-size statue of Swami Vivekanand at the Westlake Square Park. The life-size bronze statue was jointly unveiled today by Seattle Mayor Katie Wilson and Consul General of India in Seattle. Sharing the details in an official statement, the consulate said, "This monument is the first installation of Swami Vivekanand, which is hosted by a city government anywhere in the United States."
हार्मूज जल डमरू मध्य को ब्लॉक करने की राष्ट्रपति ट्रंप की घोषणा के बाद अमरीकी सेना आज ईरानी बंदरगाहों से जहाजों की आवाजाही अवरुद्ध करने की कार्रवाई शुरू करेगी। अमरीकी मध्य कमान के अनुसार ईरानी बंदरगाहों और तटवर्ती क्षेत्र से आने जाने वाले सभी पोतों पर यह कार्रवाई लागू होगी। हालांकि गैर ईरानी बंदरगाहों से गुजरने वाले पोतों को आने जाने की अनुमति होगी। हार्मूज स्ट्रेट में आने वाले पोत वाहकों को निर्देशों पर ध्यान देने और अमरीकी नौसेना के साथ संपर्क रखने को कहा गया है। अमरीका की इस घोषणा के जवाब में ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने चेतावनी दी है कि अमरीका या उसकी सहयोगी सेना के किसी भी हमले का करारा जवाब दिया जाएगा। ईरान ने हार्मूज जल जमरू मध्य पर पूरे नियंत्रण का भी दावा किया है। ईरान के साथ शांति वार्ता विफल होने के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हार्मूज जल डमरू मध्य से ईरानी कब्जा तत्काल हटाने का आदेश दिया है। उन्होंने इसे ईरान की वसूली और परमाणु महत्वाकांक्षा पर अंकुश के लिए आवश्यक बताया। उन्होंने आशा व्यक्त की कि ईरान जल्द ही अमरीकी शर्तों पर बातचीत करेगा।
In IPL cricket, Royal Challengers Bengaluru defeated Mumbai Indians by 18 runs in a league stage match at the Wankhede Stadium in Mumbai last night. Chasing a huge target of 241 runs set by the RCB, the MI managed to score 222 runs at the loss of 5 wickets for Mumbai. Sherfane Rutherford's unbeaten innings of 71 runs off just 31 balls went in vain. For RCB, Suya Sharma bagged 2 wickets. In today's fixture, Sunrisers Hyderabad will take on Rajasthan Royals at the Rajiv Gandhi International Stadium in Hyderabad. The match will begin at 7:30 p.m.
आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में भारत के महापंजीयक कार्यालय के उप महानिदेशक बिस्वजीत दास के साथ जनगणना 2027 स्वगणना कैसे करें विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछने के लिए नंबर है 0112317711, 0112317711, 0112317711 और 0112331444। तो ये थे अब तक के कुछ मुख्य समाचार। और अब हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, राजधानी दिल्ली, मुंबई और कोलकाता के समाचारों पर एक नजर। तो नीना, बताइए आप किस मेट्रो के समाचार से शुरुआत कर रही
हैं? यस रवि, आई एम बिगिनिंग विद चेन्नई।
जी,
इलेक्शन फ्लाइंग स्क्वाड ऑफिशियल्स सीज्ड गोल्ड एंड सिल्वर ऑर्नमेंट्स वर्थ सेवरल क्रोर्स इन टू डिफरेंट इंसिडेंट्स इन द सिटी। ऑफिसर्स सीज्ड गोल्ड एंड सिल्वर ऑर्नमेंट्स फ्रॉम अ कार ड्यूरिंग व्हीकल चेक इन नरसिम्हन स्ट्रीट इन थाउजेंड लाइट्स कंस्टिट्यूएंसी। द कंसाइनमेंट वॉज सीज्ड एंड हैंडेड ओवर टू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑफिशियल्स इन नंगमबक्कम preliminary inquiry revealed that the jewelry was brought from Mumbai by flight for a jewelry outlet in Chennai. In another incident, a vehicle was intercepted near Lakshmipuram on Chennai-Tirupati National Highway and gold jewelry and silver articles worth several crores were seized. Moving on to Bengaluru, the autobiography of legendary Kannada actor and Dadasaheb Phalke Award winner Dr. Rajkumar titled Kathanayakan Kathe was released by actor Shiva Rajkumar at Jnanajyoti Auditorium in Bengaluru. The event, organized by Hampi Kannada University and Dr. Manmohan Singh Bengaluru City University, marked the actor's 20th death anniversary. Some more from Bengaluru. Karnataka has proposed the Karnataka Responsible Social Media and Digital Safety Bill 2026, aimed at tightening regulation of social media platforms with a focus on AI-driven content, faster moderation and stronger user protections. Prepared by the Karnataka State Policy and Planning Commission and submitted to Chief Minister Siddaramaiah, the draft mandates labeling of AI-generated content and deepfakes along with action on harmful content within 24 to 48 hours. Railway Minister Ashwini Vaishnav has approved a new Vande Bharat sleeper service between Bengaluru and Mumbai to enhance overnight travel comfort. The train will run between KSR Bengaluru Railway Station and Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus and is likely to be operated by Southwestern Railway. And Ravi, what do we have from Delhi, Mumbai and Kolkata?
पूछिए मत, मेरे पास भी बहुत से समाचार हैं इन सभी मेट्रोस के। तो शुरुआत दिल्ली से करते हैं नीना। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कल दिल्ली मेट्रो और उससे जुड़े सड़क तथा फ्लाईओवर परियोजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राजधानी में आधुनिक और सशक्त सार्वजनिक परिवहन प्रणाली विकसित करना सरकार की प्राथमिकता है, जिससे यातायात अवरोध कम हो, यात्रा सुगम बने और प्रदूषण में कमी आए। दिल्ली सचिवालय में आयोजित इस बैठक में दिल्ली मेट्रो के प्रबंध निदेशक सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। दिल्ली सरकार मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज एमएएमसी परिसर में लगभग 500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से छात्र और छात्राओं के लिए दो नए हॉस्टल भवनों का निर्माण करेगी। इसकी घोषणा मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारा कल आयोजित व्यय वित्त समिति ईएफसी की एक बैठक में की गई। मुख्यमंत्री ने इसे चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और विद्यार्थियों को बेहतर आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में एक अहम निर्णय बताया। उन्होंने बताया कि दोनों हॉस्टलों का निर्माण कार्य करीब 36 माह में पूरा किए जाने की संभावना है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि इस प्रस्ताव के पीछे मुख्य उद्देश्य छात्रों के लिए पर्याप्त और बेहतर आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराना है। उन्होंने विश्वास जताया कि इस निर्णय से आने वाले वर्षों में मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज देश के प्रमुख चिकित्सा संस्थानों में और अधिक मजबूती के साथ उभरेगा। और नीना, अब एक जो समाचार है बहुत ही अच्छा है, उपलब्धियों वाला है। उत्तर रेलवे के दिल्ली मंडल ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान पार्सल बुकिंग से लगभग 460 करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व अर्जित किया है, जो भारतीय रेलवे में सबसे अधिक है। उत्तर रेलवे ने बताया कि वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान दिल्ली मंडल का यह अर्जित राजस्व भारतीय रेलवे का लगभग 21% और उत्तर रेलवे का लगभग 78% है। इसके अलावा पारदर्शिता बढ़ाने के लिए दिल्ली मंडल 100% डिजिटल भुगतान पर ध्यान केंद्रित कर रहा है और मार्च 2026 तक इसे हासिल करने की दिशा में अग्रसर है। वहीं वर्तमान में 96% पार्सल भुगतान ऑनलाइन माध्यम से स्वीकार किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं महाराष्ट्र मुंबई की ओर। महाराष्ट्र पर्यटन विभाग ने 13 और 14 अप्रैल 2026 को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के लिए एक निशुल्क पर्यटन यात्रा का आयोजन किया है। ये पहल बीआर अम्बेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में की गई है। ये दौरा मुंबई, नासिक और नागपुर के प्रमुख विरासत स्थलों को कवर करेगा, जिसमें मुफ्त परिवहन, निर्देशित भ्रमण और जलपान की व्यवस्था होगी, ताकि अनुयायियों और पर्यटकों के लिए डॉक्टर आम्बेडकर के जीवन और विरासत को उजागर किया जा सके। मुंबई के प्रमुख स्थलों में चैत्य भूमि और राजगृह शामिल हैं। अन्य स्थलों में सिद्धार्थ कॉलेज और बीआईटी चौल शामिल है। नासिक में मुक्त भूमि और कालाराम मंदिर प्रमुख स्थल हैं। नागपुर में दीक्षा भूमि और ड्रैगन पैलेस प्रमुख स्थल हैं। यात्राएं प्रत्येक शहर में निर्धारित स्थानों से शुरू होंगी। ये पहल आम्बेडकर के जीवन और विरासत को उजागर करती हैं। ये सामाजिक समानता और संवैधानिक योगदान पर केंद्रित हैं। निशुल्क बसें, गाइड और जलपान की व्यवस्था इसमें रहेगी। सीटें पहले आओ पहले पाओ के आधार पर उपलब्ध होंगी। आगे बढ़ते हैं नीना, चलते हैं कोलकाता की ओर। भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह पार्टी उम्मीदवारों के लिए प्रचार करने सोमवार को राज्य में आ रहे हैं, यानी कि आज आ रहे हैं। पार्टी सूत्रों के अनुसार वे दोपहर में बीरभूम के सैंथिया स्थित पल्ली मंगल क्लब मैदान में एक रैली को संबोधित करेंगे। इसके बाद बीरभूम में एक और जनसभा होगी। जनसभाओं के बाद वे पश्चिम बर्धमान के लिए रवाना होंगे, जहां वे दुर्गापुर में एक रैली और रोड शो करेंगे। उसी रात वे दुर्गापुर के फॉर्च्यून पार्क में पार्टी की संगठनात्मक बैठक में शामिल होंगे। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी के भी राज्य में कई चुनावी कार्यक्रम आज निर्धारित हैं। पार्टी सूत्रों के अनुसार वे सुबह लगभग 11:30 बजे सूरी में उम्मीदवार उज्जवल चैटर्जी के समर्थन में एक रैली करेंगी। दोपहर 12:30 बजे वे गलसी में आलोक कुमार मांझी और श्यामा प्रसन्ना लोहार के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। दोपहर 1:30 बजे बांकुरा में उम्मीदवार अनूप मंडल के समर्थन में एक रोड शो निर्धारित है। और अंत में दोपहर 2:30 बजे तृणमूल नेता दुर्गापुर में प्रदीप कुमार मजूमदार और कोबी दत्ता के समर्थन में एक जनसभा करेंगी। तो ये थे अब तक के कुछ मेट्रो समाचार। आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर श्रोता सुन रहे हैं कार्यक्रम आज सवेरे रवि और नीना के साथ। और कार्यक्रम आज सवेरे में अब बात मौसम की। तो नीना, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में दिन के समय आज तेज हवाएं चलने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। मुंबई में आज साफ आसमान रहने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 25 और अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। और कोलकाता में भी आज नीना मौसम साफ रह सकता है। न्यूनतम तापमान 24 और अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है।
रवि, नाउ आई मूव ऑन टू द वेदर न्यूज ऑफ चेन्नई, बेंगलुरु एंड हैदराबाद।
जी,
Chennai is expected to have a partly cloudy sky. The minimum temperature was 27 degrees Celsius and maximum will be around 37 degrees. Bengaluru is expected to have a partly cloudy sky. The minimum temperature was 24 degrees Celsius and maximum will be around 35 degrees. Hyderabad is expected to have a partly cloudy sky with haze. The temperature will hover between minimum of 26 degrees and a maximum of 39 degrees Celsius.
और नीना, इससे पहले कि हम इतिहास के पन्नों को पलटें, अपने श्रोताओं को जानकारी दें कि आज 13 अप्रैल है और ये दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड स्मृति दिवस के रूप में हर साल मनाया जाता है। ये दिन 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में ब्रिटिश सैनिकों द्वारा निहत्ते भारतीयों पर किए गए क्रूर नरसंहार की याद दिलाता है। जी हाँ, जलियांवाला बाग हत्याकांड आज भी ब्रिटिश शासन के जनरल डायर की कहानी कहता नजर आता है, जब उसने सैकड़ों निर्दोष देशभक्तों को अंधाधुंध गोलीबारी कर मार डाला था। वो तारीख आज भी विश्व के बड़े नरसंहारों में से एक के रूप में दर्ज है। ये दिन उन सैकड़ों शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है जो बैसाखी के दिन जनरल डायर की गोलियों का शिकार हुए थे।
Yes, Ravi. Today, 13th April is remembered as a solemn day in Indian history, marking the Jallianwala Bagh massacre. On this day in 1919, thousands of innocent people gathered peacefully at Jallianwala Bagh in Amritsar during the Vaisakhi festival without any warning or chance to escape. British troops led by General Dyer opened fire on the unarmed crowd, turning a peaceful gathering into a horrific tragedy. The narrow exit and enclosed space made escape most impossible, resulting in the death of hundreds and injuries to many more. This brutal incident deeply shocked the entire nation and became a major turning point in India's freedom struggle, strengthening the resolve of people and inspiring leaders like Mahatma Gandhi to intensify the fight for independence. Today, the Jallianwala Bagh Memorial stands as a powerful reminder of sacrifice, courage and the importance of protecting human rights and freedom for future generations.
और नीना, आज ही है विश्व सार्कोइडोसिस दिवस, जो दुर्लभ सूजन रोग के प्रति जागरूकता, मरीजों के समर्थन और शोध को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। इसमें फेफड़ों लिम्फ नोड्स में ग्रैनुलमस बनते हैं और इसका निश्चित इलाज नहीं है। इस दिन लोग टर्न द वर्ल्ड पर्पल अभियान के अंतर्गत बैंगनी रंग पहनकर लाइटिंग कर जागरूकता फैलाते हैं। और अब पलट लेते हैं इतिहास के पन्नों को और जान लेते हैं कि इतिहास में आज के दिन क्या क्या हुआ। तो 1742 में आज के दिन जॉर्ज फ्रेडरिक हेंडल की प्रसिद्ध कृति मेसियाह का पहला प्रदर्शन डबलिन में हुआ, जो बाद में विश्व की महान कोरल रचनाओं में शामिल हुई।
इन 1598 द एडिक्ट ऑफ नॉन्ट वाज इश्यूड बाय किंग हेनरी IV ऑफ फ्रांस ग्रांटिंग लिमिटेड रिलीजियस फ्रीडम टू प्रोटेस्टेंट्स एंड हेल्पिंग एंड द फ्रेंच वॉर्स ऑफ रिलीजन। In 1699, Guru Gobind Singh founded the Khalsa Panth at Anandpur Sahib on Baisakhi, establishing a distinct Sikh identity and code of conduct. In 1941, the Soviet Union and Japan signed the Soviet-Japanese Neutrality Pact, allowing both nations to avoid conflict during World War II.
1849 में आज के दिन हंगरी ने लाओस को शुथ के नेतृत्व में ऑस्ट्रियाई साम्राज्य से स्वतंत्रता की घोषणा की, हालांकि बाद में इसे दबा दिया गया था। और 1970 में आज ही के दिन अपोलो 13 उड़ान के दौरान विस्फोट से मिशन संकट में पड़ा, लेकिन अंतरिक्ष यात्री सुरक्षित लौटे।
इन 1975 द लेबनीज सिविल वॉर बिगैन आफ्टर क्लैशेस इन बीरूत रिजल्टिंग इन प्रोलॉन्ग्ड कॉन्फ्लिक्ट दैट लास्टेड अंटिल 1990।
1984 में आज के दिन भारत ने सियाचिन में ऑपरेशन मेघदूत शुरू कर रणनीतिक नियंत्रण स्थापित किया था।
इन 1997 टाइगर वुड्स वन मास्टर टूर्नामेंट बिकमिंग द यंगेस्ट विनर एट एज 21 एंड द फर्स्ट अफ्रीकन अमेरिकन टू अचीव दिस माइलस्टोन।
और निनाब समय हो गया है कुछ विशेष महानुभावों की पुण्यतिथियों, जयंतियों या जन्मदिन के बारे में बात करने का। तो इस क्रम में आज सबसे पहला नाम है बाबू गुलाब राय का, जिनका जन्म हुआ 17 जनवरी 1888 और निधन 13 अप्रैल 1963 को। वे भारत के प्रसिद्ध साहित्यकार, निबंधकार और व्यंग्यकार थे। वे हमेशा सरल साहित्य को प्रमुखता देते थे, जिससे हिन्दी भाषा जन जन तक पहुंच सके। गुलाब राय जी ने दो प्रकार की रचनाएं की, दार्शनिक और साहित्यिक। उनकी दार्शनिक रचनाएं उनके गंभीर अध्ययन और चिंतन का परिणाम है। और बाबू गुलाब राय द्वारा लिखित मुख्य रचनाओं में शामिल हैं नवरस, नाट्य विमर्श, काव्य के रूप, भारतीय संस्कृति की रूपरेखा, जीवन, पशु, ठलुआ क्लब आदि।
Dorothy Ashby was an American jazz harpist and composer, hailed as one of the most unjustly underloved jazz greats of the 1950s and the most accomplished modern jazz harpist. Ashby established the harp as an improvising jazz instrument beyond earlier use as a novelty or background orchestral instrument, improving the harp could play adeptly the instruments commonly associated with jazz, such as saxophone or piano. Ashby had to overcome many obstacles in pursuing her career as an African-American female musician in a male-dominated industry. She was at a disadvantage. In a 1983 interview with W. Royal Stokes for his book Living the Jazz Life, she remarked of her career, "It's been maybe a triple burden in that not a lot of women are becoming known as jazz players." Ashby successfully navigated these disadvantages and subsequently aided in expanding who listened to harp music and what the harp was deemed capable of producing as an instrument. Let's listen to Dorothy Ashby's The Jazz Harpist.
और अब बात कर लेते हैं हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता बलराज साहनी के बारे में, जिनका जन्म हुआ 1 मई 1913 और निधन 13 अप्रैल 1973 को। बलराज साहनी ख्याति प्राप्त लेखक भीष्म साहनी के बड़े भाई और चरित्र अभिनेता परीक्षित साहनी के पिता थे। वे रंगमंच और सिनेमा की अप्रतिम प्रतिभा थे। बलराज साहनी को एक ऐसे अभिनेता के रूप में जाना जाता था जिन्हें रंगमंच और फिल्म दोनों ही माध्यमों में समान दिलचस्पी थी। उनकी सबसे बड़ी विशेषता नीना ये थी कि वे अपने सशक्त अभिनय से दर्शकों को पर्दे के पात्र से भावनात्मक रूप से जोड़ देते थे। बलराज सहनी बेहतरीन साहित्यकार भी थे। उन्होंने पाकिस्तान का सफर और रूसी सफरनामा जैसे चर्चित यात्रा वृत्तांतों की रचना भी की थी।
यस रवि, आई वांट टू ऐड टू दिस दैट इन द लेट 1930s सहनी एंड हिज वाइफ लेफ्ट रावलपिंडी टू ज्वाइन टैगोर्स विश्व भारती यूनिवर्सिटी इन शांति निकेतन इन बंगाल एज इंग्लिश एंड हिंदी टीचर्स।
जी, और बलराज सहनी की मुख्य फिल्मों में शामिल हैं काबुलीवाला, लाजवंती, हकीकत, दो बीघा जमीन, धरती के लाल, गर्म हवा, वक्त, दो रास्ते आदि। तो सुन लेते हैं बलराज सहनी पर फिल्माए गए कुछ सदाबहार गीतों की एक मधुर मेडली।
मेरे प्यारे वतन, मेरे बिछड़े चमन, तुझको बुलाके दोबारा, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान।
तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, लौटा जो दिया चले जाएंगे जहां से हम।
तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा।
और अब बात कर लेते हैं जन्मदिन की, जयंतियों की। तो इस क्रम में आज सबसे पहला नाम है नीना बरकत लाए मलिक का। जानती हैं आप कौन है ये? जानती तो हैं आप भाई, ये आप जो हैं वर्मा मलिक के नाम से ज्यादा मशहूर हैं, गीतकार वर्मा मलिक के नाम से। आपका जन्म हुआ 13 अप्रैल 1925 में और निधन हुआ 15 मार्च 2009 मुंबई महाराष्ट्र में। आप भारतीय सिनेमा में प्रसिद्ध गीतकार थे, पंजाबी और उर्दू के लेखक थे। हिंदी भाषा उन्होंने मुंबई आकर सीखी और उन्होंने पंजाबी फिल्मों से अपने कैरियर की शुरुआत की और सबसे पहले उन्होंने हंसराज बहल की फिल्म में काम किया। वर्मा मलिक अंग्रेजों के खिलाफ गीत लेकर जलसों और सभाओं में सुनाया करते थे और इसी कारण उन्हें गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया था। सबसे बड़ा नादान वही है और जय बोलो बेईमान की जय बोलो गीतों के लिए फिल्म फेयर ट्रॉफी के वे विजेता भी थे। और जिन मुख्य फिल्मों में उन्होंने गीत लिखे, अगर उन फिल्मों की बात की जाए तो उनमें शामिल हैं यादगार, विक्टोरिया नंबर 203, नागिन, चोरी मेरा काम, रोटी कपड़ा और मकान, और ये जो गीत आप सुन रहे हैं वो है सावन भादो फिल्म का, वो भी उन्होंने इस फिल्म में गीत लिखे। तो सुन लेते हैं वर्मा मलिक द्वारा लिखे ये सदाबहार गीतों की एक मधुर मेडली।
ताले की चाबी लेकर फिरते मारे मारे, मैं हूँ राजा ये हैराना, ओ मैं दीवाना ये मस्ताना, दोनों मिलके गाए गाना, ओ हसीना ओ जरा रुक जाना,
मैं ना भूलूंगा,
मैं ना भूलूंगी
इन रस्मों को, इन कसमों को, इन रिश्ते नातों को, मैं ना भूलूंगा।
Samuel Beckett was an Irish novelist, playwright, short story writer, theatre director, poet and literary translator. His works are a blend of dark humour, philosophical introspection and innovative storytelling. Samuel was the Irish master of the absurd, best known for his iconic play Waiting for Godot. Here's an excerpt from the play.
And suffers like the divine Miranda with those who, for reasons unknown, but time will tell, are plunged in torment, plunged in fire, whose fire flames, if that continues, and who can doubt it, will...
और कार्यक्रम के अंतिम चरण में बात कर लेते हैं हिंदी फिल्म जगत में कैलेंडर के नाम से मशहूर अभिनेता, निर्माता, निर्देशक, कॉमेडियन और पटकथा लेखक सतीश कौशिक के बारे में, जिनका जन्म हुआ आज ही के दिन 13 अप्रैल 1956 में। उनका नाम बॉलीवुड सिनेमा का एक ऐसा नाम है जिसे कभी नहीं भुलाया जा सकता। और सुन लेते हैं उन्हीं पर पिक्चराइज ये बहुत ही प्यारा सा गीत।
मेरा नाम है कैलेंडर, मैं तो चला किचन के अंदर, बाल मांगो भैया हाथ जरा जोर के, बाल मांगो भैया हाथ जरा जोर के।
अभिनय से लेकर निर्माता निर्देशक तक उन्होंने बहुत ही अपने काम से वाहवाही लूटी। और उसी दौर में हरियाणा में हिंदी फिल्मों को इतना क्रेज भी नहीं था। बॉलीवुड में अपना करियर चुनना बहुत ही बड़ी चुनौती थी, लेकिन फिर भी इस चुनौती को स्वीकार करते हुए सतीश कौशिक ने बॉलीवुड में अपना लोहा मनवाया। चलते चलते आज का विचार कि जिंदगी में उम्मीद और मेहनत नामक दो चीजें कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि उम्मीद रास्ता दिखाती है और मेहनत मंजिल तक पहुंचाती है। इसी विचार के साथ इजाजत दीजिए रवि कपूर और नीना अरकल को आज सवेरे कार्यक्रम यहीं संपन्न करने की।
थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन, हैव अ सुपर्ब डे।
नमस्कार।